श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय एक श्लोक क्या बोलते हैं हिंदी में 46 46 आचार्यां मां विजानीयान् नावमान्येत कार्हिचित् नमार्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान श्री कृष्ण का वचन। आचार्य मेरे से अभिन्न पहचान करना चाहिए और कभी भी इनको अपमान नहीं करना, इनको ईर्ष्या नहीं करना और इनको साधारण मार्त्य मार्त्य भूति से इनको समझ नहीं है, अर्थात वे साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वे समस्त देवगण के प्रतिनिधि है। तात्पर्य तात्पर्य बहुत लंबा है तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर उससे पाठ करेंगे। ये श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब उद्धव इनसे पूछे वारणाश्रम के बारे में। उद्धव का विशेष प्रश्न था तो कैसे ब्रह्मचारी गुरु आश्रय में व्यवहार करेंगे। एक गुरु शिष्यों प्रदत्त वस्तुओं के भोगी नहीं है, वे पिताजी जैसे माता पिता के लालन पालन के भिन्न एक संतान अच्छी तरह मैनहुड इंसान इंसान नहीं हो सकते। इस प्रकार गुरु का आश्रय के बिना के यत्न के बिना कोई भी भगवत सेवा में नहीं आ सकते। गुरु का दूसरा नाम है आचार्य अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य अध्यापक। मानव संहिता में आचार्य का कार्यकलापों का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि सद्गुरु कर्तव्य लेते हैं शिष्यों को शिक्षण देने के लिए और पूर्ण रूप में शिष्यों को वैदिक ज्ञान देते हैं और दूसरा जन्म देते हैं। दीक्षा विधान जिससे आध्यात्मिक विज्ञान देना है उसका नाम है उपनीति या उपनयन। इसका मतलब है गुरु के पास समीप होना। जो गुरु के पास लाना संभव नहीं है, उपयोग नहीं है, उपवीता पढ़ने के लिए, और वैसे उसका पहचान है शूद्र। उपवीत जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के शरीर में है, दीक्षा की सदगुरु से दीक्षित होना के चिन्ह है। अगर खाली उच्च कुल में जाना लेना का दिखाने के लिए, उसका कीमत कुछ नहीं है। गुरु का कर्तव्य है उपनयनम संस्कार से शिष्य को दीक्षित करना, और इसके बाद वेद शिक्षण का आरंभ होते हैं। अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लेते हैं, वो ऐसी आध्यात्मिक दीक्षा से क्या बोलते हैं, नॉट बार फ्रॉम वो शूद्र कुल उद्भूत व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक दीक्षा से बंद नहीं है। अगर वो गुरु की अनुमति मिलते हैं, क्योंकि गुरु का अधिकार है किसी को ब्राह्मण बनाना, अगर वो व्यक्ति उपयुक्त है ब्राह्मण के लिए। वायु पुराण में आचार्य शब्द की परिभाषा है, जो समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य जानते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। स्वयं सभी वैदिक विधि निषेध पालन करते हैं और इनको शिष्यों को वैसे उपदेश देते हैं। भगवान इनकी प्रचुर दया से गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। आचार्य के व्यवहार में भगवान की प्रेममय सेवा के बिना कुछ कार्य नहीं है। वे सेवक के रूप में भगवान हैं, इसलिए ऐसे स्थिर भक्त के आश्रय में लेना है, क्योंकि ऐसे भक्त आश्रय विग्रह है, अर्थात भगवान का रूप जिनसे आश्रय लेना है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में, इस चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक भागवत से उद्धृत है, और इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य मुझसे अभिन्न है। तो कैसे अभिन्न है इसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस बात में बहुत बहुत भूल धारणा होते हैं। बहुत भंड गुरु बोलते हैं कि गुरु भगवान से अभिन्न है, इसलिए केवल मेरी सेवा करना है और भगवान की सेवा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वे भगवान की प्रतिनिधि है। तो कैसे भगवान होते हैं? ऐसे जैसे कि भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान देते, और अगर हम परंपरागत सदगुरु से भगवद गीता सीखते हैं, हम एक ही फल मिलेंगे जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रवण करने से मिले। तो अर्जुन विभ्रमित थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या लड़ाई करना नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए कि लड़ाई करना या नहीं करना, तो मेरी इच्छा पालन करना चाहिए, वो मुख्य विचार है। मतलब कृष्णा का आदेश के अनुसार, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए। अगर भगवान की इच्छा, अगर भगवान की इच्छा थी लड़ाई नहीं करना, तो अर्जुन का कर्तव्य लड़ाई नहीं करना। लेकिन भगवान की इच्छा थी लड़ाई करना, इसलिए अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना। तो ऐसे भक्ति का यही मतलब है, सब कुछ करना श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार। तो कैसे मालूम है तो भगवान की क्या इच्छा है? तो परंपरागत सद गुरु से भगवत धर्म सीखना है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि भगवान संतुष्ट होंगे। तो कृष्णा उसी स्थिति में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान बताए, और गुरु तो एक ही ज्ञान बोलते हैं, लेकिन उसी स्थिति में देश काल पत्र अलग है आज की स्थिति से और हमारे हमारी व्यक्तिगत स्थिति से। तो इस भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। ये जगत, ये शब्द का क्या मतलब है? जो गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा परिवर्तित होते हैं, तो वो ही जगत है। तो एक दिन पर और हर सेकंड में सब स्थिति बदल जाते हैं। तो कैसे भगवान का उपदेश व्यक्तिगत जीवन में दूसरी स्थिति में पालन करना है, तो ऐसे ज्ञान गुरु से सीखना है। और गुरु कैसे जानते हैं? क्योंकि गुरु का साक्षात योग योग है भगवान के साथ। साक्षात का मतलब परंपरा के द्वारा। तो कैसे आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है? कठिन है, क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर है। हम भगवान से दूर नहीं है, क्योंकि भगवान सब के हृदय में है, सब परमाणु के अंदर में है। लेकिन हमारी दूषित चेतना से हम भगवान से दूर रहते हैं। तो गुरु का कार्य है हमारी दूषित बुद्धि शुद्ध करना भगवत भक्ति से, साधना भक्ति से। जैसे कि हम और भगवान में कुछ बाध नहीं रहेगा और हम भगवान के पास जा सकते, ये गुरु का कर्तव्य है। लेकिन सब शिष्य की चेतना, सब शिष्य की दूषण अलग होते हैं। तो इसलिए गुरु सबको सामान्य शिक्षा देते हैं, लेकिन हर शिष्य को इनके व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार गुरु व्यवहार करते हैं, उपदेश देते हैं। जैसे कि वो शिष्य भगवान के निकट आ सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान और गुरु अभिन्न है। तो कैसे अभिन्न है? तो उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? पतित जीव का उद्धार करना। और कार्य एक ही है। तो भगवान की भक्ति का उपदेश देने से पति जीवन का उद्धार करना। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि गुरु पूर्ण रूप से भगवान से अभिन्न नहीं है। गुरु विष्णुपाद, अंग विष्णुपाद। गुरु को अंग विष्णुपाद ऐसे संबोधन करना है। इसका मतलब है वे विष्णु के पादाश्रय में है, अथवा वे विष्णु से अभिन्न है। विष्णु का कार्य, विष्णु का उद्देश्य पूर्ण करते हैं, इसलिए विष्णु से अभिन्न है। फिर भी अभिन्न, इसलिए विष्णु से अभिन्न है, फिर भी भिन्न है। क्योंकि विष्णु है भगवान, सेव्य भगवान, और गुरु शिष्य की दृष्टि में भगवान जैसे महान, या भगवान से महान। क्योंकि गुरु के रूप में कृष्णा बद्ध जीव, पतित जीव का उद्धार करते हैं। तो हम सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन गुरु हमको ले जाते हैं। इसलिए गुरु शिष्य की दृष्टि में गुरु एक विचार में भगवान से महान है। लेकिन गुरु तो भगवान नहीं है, वे भोक्ता नहीं है। गुरु है सेवक भगवान, वे ही सेवक है। वे स्वयं भगवान की सेवा करते हैं और दूसरों को प्रचार करते हैं और शिक्षा देते हैं भगवान की सेवा करने। और गुरु यही प्रचार करते हैं, तो कैसे ईश्वर और जीव अलग है? तो गुरु प्रचार नहीं करते कि जीव और ईश्वर एक ही है। गुरु प्रचार नहीं करते कि मैं भगवान हूं। गुरु प्रचार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और मैं भगवान का दास का दास का दास का दास हूं, और तुम भी दास के दास के दास के दास के दास हो, लेकिन अभी होया मायार दास करी नाना अभिलाष। अभी कृष्ण सेवा की इच्छा नहीं है, हम माया का दास है, इसलिए बहुत प्रकार के दूसरे अभिलाष इच्छाएं हैं। तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं कैसे हम भगवान के पास जा सकते, इसलिए गुरु कृष्ण के अति प्रिय है। भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं पति जीव का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधु स्वयं आते हैं और इनके पृष्ठ भक्तों को भेज देते हैं इस भौतिक संसार में। तो एक ही उद्देश्य के लिए, पथिक जीवन का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए गुरु एक परिप्रेक्ष्य में भगवान से अभिन्न है और अन्य परिप्रेक्ष्य में भगवान से भिन्न है। वे गुरु तो सृष्टिकर्ता नहीं है, वे गोपीनाथ नहीं है, भगवान है गोपीनाथ जगन्नाथ, और गुरु है गोपी भातुर पद कमल दास दास अनुदास जगन्नाथ के दास के दास के दास के दास के दास। लेकिन क्योंकि गुरु भगवान की विशेष शक्ति से संचारित होते, उससे एक परिप्रेक्ष्य में भगवान जैसे महान है। कली काल है धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन। इस कली काल में युग धर्म है नाम संकीर्तन और खाली ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण शक्ति से संचारित होते हैं इस नाम संकीर्तन धर्म इस भौतिक संसार में प्रवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे अचिंत्य भेद भेद गुरु शिष्य का विचार में, शिष्य के परिप्रेक्ष्य में भगवान से हल्का नहीं देखते। गुरु का मतलब भारी, तो गुरु हल्का नहीं है, गुरु लघु नहीं है। गुरु लघु ये दो शब्द विपरीत है, गुरु का मतलब भारी और लघु का मतलब हल्का। तो गुरु भारी है तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत कुछ कहते हैं और ऐसे बहुत मक्ता है, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से भारी है, स्वभाव गंभीर है। गुरु तो भोग विलास ही नहीं है, गंभीर है, क्योंकि जानते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। गुरु का काम बहुत बड़ा है, तो इस देश में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बहुत बड़ा है नहीं, और अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन उससे और बड़ा भार है गुरु का, क्योंकि गुरु का भार है पतित जीवन का उद्धार करना। तो ऐसे अचिंत्य भेद भेद गुरु भगवान से अभिन्न है, फिर भी मालूम होना चाहिए कि कृष्ण ही कृष्ण है और गुरु कृष्ण की प्रतिनिधि है। लेकिन जैसे भगवान का सम्मान करना तो वैसे गुरु का और सभी वैष्णव का। वास्तव में भगवान से वैष्णव की उपासना और अधिक होना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव को, ये श्लोक जो हम पढ़ते वो उद्धव संदेश से, उद्धव गीता से, भगवान से, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव को पूजा विधि बताए तो कैसे भगवान का दिव्य मूर्ति स्थापित होते हैं, कैसे श्रृंगार करना है, आरती करना, भोग अर्पण करना, फल फल जल इत्यादि अर्पण करना, भगवान के लिए उद्यान बनाना है इत्यादि। तो उसमें श्री कृष्ण और कहते हैं कि मद भक्ता पूजा बधिका। तो कृष्ण की पूजा विधि में एक महत्वपूर्ण विधि है कि कृष्ण की पूजा से इनके भक्तों की पूजा और ज्यादा होना चाहिए। भगवान शिव भी ऐसे बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मतलब वे पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, लेकिन क्योंकि वे महान वैष्णव थे और शक्तिशाली देवता है, इसलिए शिव जी भी भगवान बोलते हैं। इस श्लोक में नारद भी भगवान बोलते हैं, क्योंकि ये सब वैष्णव भगवान की प्रतिनिधि है। तो एक बार देवी पार्वती महादेव से पूछ कि देखते हैं कि बहुत प्रकार की उपासना होते हैं, विष्णु की, आपकी, मेरे की, बहुत देवताओं की, नाग पूजा भी होते हैं, तो यही सब प्रकार की पूजा होते हैं, तो ये सभी प्रकार की पूजा में कौन सी श्रेष्ठ है। उत्तर में महादेव बोले आराधनानं सर्वेशं विष्णोर आराधनं परम, सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु की, लेकिन उससे और श्रेष्ठ है विष्णु भक्तों की। तो गुरु पूजा, पूजा के पहले, भगवान की पूजा के पहले गुरु पूजा करना है, क्योंकि गुरु से हम अधिकार मिलते और अधिकार मिलते भगवान की पूजा करना और ज्ञान भी मिलते, तो कैसे भगवान की पूजा करना है हम तो नहीं मालूम, तो इसलिए गुरु हमको शिक्षा देते। तो वो शिक्षा विशाल है, तो कौन भगवान है, तो कैसे भगवान भगवान है, तो गुरु शिक्षा देते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो क्या खाली हमारा मत है तो कृष्ण भगवान है, जो तो मत था तो पथ, ऐसे होते हैं कि हमारा मत है कि कृष्ण भगवान, और अगर आपकी रुचि हो तो इंद्र चंद्र वायु आपके लिए भगवान हो सकते हैं, साई बाबा भगवान, कुत्ता भगवान, जैसे इच्छा के अनुसार, ऐसा होते हैं। तो खाली हमारी रुचि है कि कृष्ण ही भगवान, ऐसा नहीं है। ये समस्त शास्त्र का सिद्धांत वो गुरु सिखाते तो कैसे कृष्ण ही भगवान है, कैसे सभी देवताओं और सभी जीव कृष्ण के अधीन है और सब कृष्ण के दास दासी है। यं ब्रह्म रुद्र मरुतस यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस तंदन्ति दिव्याय, तो शास्त्र से ज्ञान देते हैं। तो कैसे कृष्ण भगवान और कैसे इनकी उपासना करना है, अर्चन मार्ग में बहुत विधि निषेध है, तो कैसे भगवान की पूजा करना है, गुरु शिक्षा देते हैं। और किस प्रकार की भावना से भगवान की सेवा करना है, भक्ति में भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यदि सब विधि निषेध पालन करते हैं लेकिन दंभ से या ईर्ष्य से पालन करते हैं तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। तो सब कुछ करना चाहिए वास्तविक भक्ति भाव के साथ। अगर हम कुछ दान देते हैं फिर सबको बोलते हैं मैं इतना सा दान दिया था, मैं इतना सा दान दिया था, तो क्या भगवान संतुष्ट होंगे? वो दान देना क्या भक्ति से या खुद की प्रतिष्ठाशा से? अगर हम प्रवचन देते हैं और सोचते कि मैं इतना सुंदर प्रवचन देता हूं तो मेरे से अच्छा वक्ता कोई नहीं है, तो भगवान संतुष्ट होंगे? तो भक्ति का नाम में अगर हम खाली अपना अहम का पोषण करते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए गुरु शिष्यों को अच्छी तरह मार्गदर्शन देते हैं, जैसे कि वे चुनादपि सुनिचेन का श्लोक का अर्थ के अनुसार भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये गुरु तत्व अपार है क्योंकि कैसे एक गुरु शिक्षा देते हैं, तो सभी गुरु का कर्तव्य एक ही है, आचिनोति यशस्त्रान आचिनोति यशस्त्रातम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। गुरु शिक्षा देते हैं शास्त्र के अनुसार, स्वयं जानते हैं शास्त्र का मूल अर्थ और स्वयं शास्त्र अनुमोदित आचरण पालन करते और वैसे शिक्षा देते। तो ये आचार्य का कर्तव्य है, नहीं है कि गुरु एक बात बोलते हैं लेकिन और दूसरा आचरण करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बोलते हैं कि मांसाहार मत करो और स्वयं करते हैं, ऐसा नहीं है। और बोलते हैं हरि नाम करो और लेकिन मैं नहीं करता, तुम करो, ऐसा नहीं होता। तो स्वयं भक्ति करते हैं और शिष्यों को सिखाते हैं तो कैसे भक्ति करना, किस लिए भक्ति करना। भक्ति करने से ही क्या फल मिलते, तो ये सब सिखाते हैं। तो सभी गुरु का साधारण कर्तव्य एक ही है, लेकिन इसलिए एक वचन है कि गुरु एक है, नहीं है कि हजार हजार गुरु है या दो गुरु है, तीन गुरु है, एक है। वास्तव में एक गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। और दूसरे जो गुरु है तो कृष्ण के प्रतिनिधि है, लेकिन गुरु एक है क्योंकि गुरु का कर्तव्य और उपदेश एक ही है। कर्तव्य, उपदेश, उद्देश्य एक ही है। तो ऐसे बोलना है गुरु एक है, क्योंकि गुरु अनेक होने के भी तो सब भगवान की प्रतिनिधि है। और जैसे सूर्य सूरज एक है, लेकिन सूर्य की प्रतिबिंब अनेक होते हैं, लेकिन सब प्रतिबिंब तो वो एक ही सूर्य का आकार में। तो वैसे ही गुरु एक है, बहुत रूप में गुरु एक है। तो गुरु एक है, जैसे कि हमारा परमाराध्य श्रील प्रभुपाद, इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भिन्न नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके गुरु गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज से भिन्न नहीं है। तो कैसे अभिन्न है? तो एक ही व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभिन्न है क्योंकि जो उपदेश हम प्रभुपाद से मिलते हैं उसका पालन करने से हम कृष्ण के पास जा सकते। और भक्ति सरस्वती ठाकुर के शिष्यों उपदेश जो मिले भक्ति सरस्वती ठाकुर से, तो वो उपदेश पालन करने से भगवान के पास जा सकते। तो ऐसे है कृष्ण जैसे अर्जुन को बोले, जैसे उद्धव को बोले, तो वैसे गुरु एक ही उपदेश शिष्यों को देते हैं और वैसे शिष्यों एक ही फल मिलते हैं। अगर कृष्ण स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, हम गुरु से उपदेश मिलने से और ज्यादा फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा एक ही ज्ञान देते हैं और भगवान का पूरा आशीर्वाद है। जैसे कि हम अर्जुन जैसे एक ही फल मिलेंगे, अगर हम अर्जुन जैसे भगवान का उपदेश पूर्ण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे गुरु एक है और अनेक भी है, सब गुरु अलग अलग भी है। जैसे कि गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो बाह्य दृष्टि में दोनों के चरित्र बहुत पृथक था। तो सिद्धांत सरस्वती इनके जीवन के प्रथम भाग में गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज जैसे महान वैराग्य पालन किया है, लेकिन उसके बाद कलकत्ता आके तो गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज तो अनिकेत होते, तो कोई वासस्थान नहीं था। फिर बहुत से लोग बाबूजी महाराज के पास आए और प्रार्थना की, तो आपके लिए हम कुटी बनेंगे, फिर बाबा जी महाराज बोले ठीक है, अगर मुझको इतना सब परेशान देते हो मेरे लिए घर बनाना की प्रार्थना बार बार करते हो तो ठीक है, मैं एक लैट्रीन में रहूंगा। और कहीं मायने लैट्रीन में रहते थे और कोई इनके पास नहीं है, क्योंकि सोचे कि वो ये महाराज पागल है, लैट्रीन में रहते उसका बदबू है और अशोक स्थान। लेकिन भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर कलकत्ता और अनन्य स्थान में विशाल राजमहल जैसे मंदिर और आश्रम बनाए। गौकिशोर दास बाबूजी महाराज भौतिक विषय लोग से दूर रहते थे। एक बार एक महाराज नवदीप आए बाबूजी महाराज को ले जाना, तो मेरे साथ आओ और मेरे घर मेरे राज प्रसाद आओ, प्रसाद आइए और आप पदार्पण करके मेरे राज प्रसाद को पवित्र बनाए। तो गौकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि महाराज मैं फतिक जीव हूं, अगर आपके पास जाऊंगा और राज प्रसाद देखूंगा तो संभव होगा कि मेरी भौतिक इच्छा आएगी और मैं चाहूंगा आप जैसे राजा होना और आपका राज प्रसाद खुद के लिए लाना, तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अच्छा होगा अगर आप मेरे संग चाहते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे संग चाहते हैं, तो अच्छा हो आप राज प्रसाद वापस मत जाओ, मेरे साथ रहो और मेरे जैसे खंगाल रहो और भगवान की भक्ति करो। तो भौतिक भोग विलासी से गौकिशोर दास बाबा जी महाराज दूर रहते थे, जो लैट्रीन में रहते थे, जैसे कि वो सब भोग विलासी नहीं होंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राजमहल जैसे मंदिर बने और बड़े बड़े व्यक्ति राजा पॉलिटिशियन इत्यादि को बोला है और ब्रिटिश भी बोला, नेचर गो हत्याकारी, तो सबको बुलाया आइए और स्वयं अच्छा पोशाक पहनते थे और कार में जाते थे। उस समय तो कार बहुत कम इंडिया में थे, इंडिया में थी। तो ऐसे बाह्य दृष्टि से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक विचित्र साधु थे। उस समय तो साधु कार में नहीं जाते थे, ट्रेन में। तो साधु का कर्तव्य है सभी जाएगा जाना पैदल से, इसलिए वो शंकराचार्य का प्रस्ताव था चाइना जाना, और वो शंकरामन बोला जी अगर पैदल से जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं चलेंगे। तो वो विधि है, जैसे कि साधु तो साधु होगा, साधु का नाम राजा नहीं होंगे, इसलिए ये सब विधि है। तो साधु विरक्त होना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उस प्रकार का साधु नहीं थे। इनका आचरण बाह्य दृष्टि से गौकिशोर दास बाबा जी महाराज से पूर्ण पृथक था, लेकिन उद्देश्य एक ही था, हरि सेवा। गौकिशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आदेश दिया भगवत भक्ति प्रचार करो। तो इस आधुनिक युग में तो इतना विरक्त होने से कोई ऐसा साधु के पास नहीं आते। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ये सब ऐश्वर्य ग्रहण किए भक्ति प्रचार करने के लिए। इसके अनुसार श्रील प्रभुपाद भी बड़े बड़े मंदिर बने। तो एक बार वृंदावन में उस समय इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कार्य चलता था। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछा कि आप बोलते कि आप रूपानोगा वैष्णव है, रूप गोस्वामी के अनुगामी, लेकिन रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की विधि थी। तो एक एक रात एक एक पैर के नीचे शयन करना, और आप इतना सुंदर मार्बल मंदिर बनाते क्यों? तो कैसे आप रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं? तो प्रभुपाद बोले कि ये मंदिर मेरे लिए नहीं है, ये मंदिर आपके लिए है, क्योंकि अगर मैं पैर के नीचे बैठूंगा आप मेरे पास नहीं होंगे। आप सोचेंगे वृंदावन में इतने सब कंगाल साधु है, सब बेकार है, सबको दस दस पैसा दे के भगा दो। तो प्रभुपाद अनुभूति ऐसी थी। तो प्रभुपाद अमेरिका का गमन के पहले वृंदावन दिल्ली ये सब जाएगा प्रचार का प्रयास किया, लेकिन सहायक कोई नहीं थे, सुनने वाले बहुत कम। तो कोई प्रभुपाद को सीरियसली ग्रहण नहीं किया, सब सोचते था एक साधु है, इतना से साधु ये सब साधु सब पेट भरने वाले हैं, तो कुछ काज नहीं कुछ काम नहीं कर सकते, तो इसलिए साधु बनते हैं और साधु को खिलाओ बोलते हैं। तो प्रभुपाद का उद्देश्य था हरि भक्ति प्रचार। तो ये सब मूर्ख तो कैसे आकर्षित होगा? तो मूर्ख का आकर्षण है मार्बल को, तो ठीक है मार्बल मंदिर बना। अगर ऐसा ऐश्वर्य का दिखाना है तो सब सोचेंगे वो ये सही साधु है, सक्सेसफुल साधु। तो सक्सेस है कृष्ण सेवा। प्रभुपाद अमेरिका का जाने के पहले और बाद तो एक ही प्रभुपाद थे, लेकिन जाने और वापस आने के पहले कोई प्रभुपाद को नहीं मानते थे, और वापस आने के बाद अमेरिकी शिष्यों लेके और बड़ा बड़ा मंदिर बना के सब सोचे हो ईसा ही साधु, क्योंकि वो मायाबद्ध जी मूर्ख है और साधु को पहचान नहीं करते। तो इसलिए प्रभुपाद बड़ा बड़ा मंदिर बना के सबको बताया कि कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ निरार्थ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज तो दोनों गुरु है, दोनों एक ही है। देश काल पत्र के अनुसार इनके व्यवहार और प्रयास पृथक था, लेकिन उद्देश्य एक ही था। तो ऐसे प्रत्येक गुरु, गुरु का मतलब वैष्णव, विष्णु सेवक और वैष्णव सेवक, जो गुरु का आदेश के अनुसार भार लेते हैं और नवीन वैष्णव को मार्गदर्शन देना। वैष्णव कभी भी नहीं सोचते मैं गुरु हूं, लेकिन अगर गुरु आदेश देते हैं तो यही सेवा करना, उपदेश देना, दीक्षा देना। तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु आदेश पालन करना। तो ऐसे बहुत गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस द्विधा के बारे में बोले कि अगर एक वैष्णव गुरु बनते तो वो वैष्णव नहीं होते, क्योंकि गुरु प्रभु जैसे होते और वैष्णव का मतलब दास। लेकिन अगर वैष्णव तो गुरु का कार्य नहीं करते हैं तो जीव का उद्धार नहीं होगा और परंपरा रुक जाएगा। तो गुरु का आदेश के अनुसार वैष्णव गुरु होते हैं। तो सब वैष्णव जो गुरु कार्य और भार लेते हैं तो सब एक ही है, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। तो फिर भी सब अलग अलग व्यक्ति हैं और इनके स्वभाव, आचरण, शिक्षा विधान सब शास्त्र के अनुसार होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भेद वो होते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि एक गुरु बहुत उदार होते हैं और दूसरा बहुत कड़ा होते हैं, और एक गुरु खस नाम कीर्तन करते हैं और दूसरे हरि कथा कीर्तन करते, तो दोनों कीर्तन है। और एक गुरु की विशेष रुचि है अर्चन में। तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है। तो आज थोड़ा सा गुरु तत्व के बारे में बोला। ये तत्व विशाल है, विशाल और अपार है। तो कहो हम इसके बारे में और कहूंगा अगर जगन्नाथ की इच्छा हो। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, कुछ लोग गुरु के बिना भगवान की सेवा करते हैं। नहीं, ऐसा हम देखते हैं इतिहास में कि कुछ महान व्यक्ति है जिनके गुरु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। हरिदास ठाकुर, इनके गुरु कौन? चैतन्य महाप्रभु खरे। तो हम पता नहीं मिलता है कि हरिदास ठाकुर दीक्षित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि भाई हरि नाम से दीक्षित हुए, लेकिन दीक्षा देने वाला कौन? लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए अगर गुरु आश्रय नहीं लेते हैं तो और सोचते कि मैं सीधे भगवान की सेवा करेंगे तो प्रगति नहीं होगी, जितने भी करते हैं तो प्रगति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं ये विधान देते हैं कि मेरी सेवा मेरे सेवक के द्वारा होना चाहिए। तो अगर हम सोचते थे बिना गुरु मैं कृष्ण सेवा करूंगा तो वो सेवा नहीं है, वो खाली दंभा है। क्या 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 होना चाहिए? अर्हत, अर्हत क्या आने के बाद या आने के पहले? आश्रय लेने के लिए तो नम्रता, हम आश्रय लेने का मतलब मैं निराश्रय हूं, मैं अनाथ हूं, मैं आरक्षित हूं। आश्रय लेने का मतलब तो रक्षा माम प्रार्थना करना है, मुझको रक्षा करो। तो अपना लघुत्व समझ के गुरु के पास जानना चाहिए। अगर हम सोचते मैं गुरु हूं, मैं भारी हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो हम अयोग्य है गुरु आश्रय लेने के लिए। आश्रय लेने का मतलब आत्मसमर्पण। ऐसा नहीं है कि हम आश्रय लेते हैं और फिर स्वतंत्र आचरण करते हैं, तो वो आश्रय लेना नहीं है। तो नम्र होना चाहिए, क्योंकि शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन में होते आश्रय होते हैं शासन से। ऐसा करो ऐसा मत करो। अगर हम प्रस्तुत नहीं है गुरु का आदेश पालन करना तो खाली नाम में दीक्षा लेने से फायदा नहीं होगा। दीक्षा का मतलब नहीं है खाली यज्ञ में बैठना, नाम बदल करना, तो वो दीक्षा का सार नहीं है। दीक्षा का सार सार मार्म है नवीन जन्म प्राप्त करना। मैं जो था उसको भूल किया, अभी मैं नया हूं।
आपने बोला है कि कृष्ण अर्जुन को बोला कि वे भगवान की इच्छा है कि तुम लड़ो, तुम्हारा इच्छा नहीं है, लेकिन बात है कि भगवान
कृष्ण की इच्छा थी और अर्जुन कृष्ण का दास थे, इसलिए अर्जुन का कर्तव्य था भगवान की इच्छा के अनुसार लड़ाई करना। ऐसे नहीं है कि सबका कर्तव्य है लड़ाई करना, वो लड़ाई करना या नहीं करना वो बात नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा पालन करना वही बात थी।
लेकिन महाभारत में और एक जगह पढ़ना है कि भीष्म मरने के टाइम रो रहा है,
हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि लड़ाई करना या नहीं करना ये मूल विषय नहीं है। उसी स्थिति में कृष्ण की इच्छा थी अर्जुन का लड़ाई करना, दूसरी स्थिति में करे लड़ाई नहीं करना कृष्ण की इच्छा होती। तो अगर कृष्ण बोलते ऐसा करो तो ऐसा करना, और अगर एक सेकंड के बाद बोलते ऐसा मत करो तो नहीं करना चाहिए।
तो हम लोग जैसा आत्मा को कैसे पता चलेगा कृष्ण का इच्छा
कहता है? इसलिए तो गुरु से पूछना चाहिए, गुरु आदेश देंगे। साधारण उपदेश है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वैसे भक्ति करो, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उससे गुरु से उपदेश लेना है। और खाली उपदेश नहीं, कभी कभी गुरु तो उपदेश नहीं देते लेकिन परामर्श देते, तो ऐसे करना अच्छा होगा। तो गुरु से उपदेश लाना शरण लेना का मतलब नहीं है कि अपनी बुद्धि बंद करना, ऐसा नहीं है। तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे हमारी बुद्धि हम भगवान की सेवा में लगा सकते, ऐसे नहीं। कृष्ण तो अर्जुन को नहीं बोले कि मैं बोला तुम करो बस, तो शुरू से ही कृष्ण ऐसे बोल सकते, तो मैं भगवान हूं तुम जीव हो मैं ऐसे बोलता हूं तुम करो बस, लेकिन नहीं, कृष्ण पूरा तत्व ज्ञान बता के अर्जुन को बोले यथेच, मैं सब कुछ तुमको बोला और अभी यथेच सीतथा करो, तुम निर्णय करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरे आदेश पालन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं तो सत्यनाश होगा, लेकिन निर्णय करना तुम्हारा हक में है। थोड़ा जोर से बोले और जोर से इंजन चलाते,
क्यों
छोड़ देते हैं
भगवान? क्यों ऐसे छोड़ देते हैं अपना
आदमी? क्यों छोड़ देता है कि निर्णय करना
तुम्हारा
काम है? वो हृदय प्रेरणा है चौर की दूषित बुद्धि है। तो कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मतस्मृत ज्ञान अपोहनम च, भगवान मच्छा के हृदय में भी है। और प्रेरणा देते हैं कि एक साधु वहां पर बैठ रहे हैं जाप करते हैं, तो उसका खून बहुत स्वादु है, जाओ हिलो। तो अगर हम नरक के और जानना जाते हैं, अगर हमारा ऐसे संकल्प होते हैं कि मैं बदमाश होऊंगा, तो भगवान भी हमको सहायता देते, लेकिन साथ ही साथ भगवान इनके प्रतिनिधि वैष्णव हमारे बीच में भेज देते हैं और हमको उपदेश देते, तो ऐसे करना अच्छा नहीं है। तो वो कहानी नहीं है वाल्मीकि, उदास्यु था चोर था डाकू, तो नारद मुनि उसको बताया कि तुम नहीं जानते हो तो ऐसा काम करने से क्या फल होगा। तो आत्मीय स्वजन के लिए डाकती करते हो लेकिन अकेला नरक जाना पड़ेगा। वो चार पोचा की क्या करूं। तो नारद मुनि ऐसा कहानी है, तो नारद मुनि बोले तो भगवान का नाम बोलो, नहीं आते, मैं डाका था तो मेरा मुंह से खाली मारा 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 वो ऐसा शब्द आते। तो नारद मुनि बोले ठीक है मारा 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 बोलो, तो मारा 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 बोलने से तो धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, मारा 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 राम 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 राम, फिर वाल्मीकि बन गया रामायण इनके उपहार है। तो हमारी इच्छा है दुर्धा होना, और भगवान एक तरफ से हमको सहायता करते और दूसरा तरफ से हमको उपदेश देते हैं ऐसा नहीं करना।